आज इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित है समाज सेवा प्रभा की नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विषय है री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रॉस्पेरस सोसाइटी बाय वैल्यू बेस्ड सर्विस, मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना, अपने में अनेक गहराइयों को समाया हुआ है। हमें सेवा तो करनी है लेकिन उसका आधार मूल्य होना चाहिए, और इस सेवा की शुरुआत हमें करनी है कहाँ से? स्वयं से करनी है। जब हम स्वयं की सेवा करेंगे तभी हम परिवार की सेवा कर सकते, जब परिवार की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा कर सकते, जब समाज की सेवा करेंगे तो देश की सेवा करेंगे, और जब देश की सेवा होगी तो विश्व सेवा होगी। इसलिए सेवा के प्रथम कड़ी हम स्वयं होने चाहिए। तो आइए हम सभी समाजसेवी आज इस परमात्मा की भूमि में ये संकल्प लें कि हम ये जो 5 दिवसीय का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को अच्छी रीति से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ दी जा रही बहुमूल्य जानकारी को आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को मूल्य आधारित बनाएंगे। आप सभी समाज सेवियों का मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगी। मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि हम जिन्हें बुलाते हैं वे बेहद खास होते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है आपका जो भगवान के दिल के पास होते हैं, स्वागत है आपका जो भगवान के दिल के पास होते हैं। भाग्य उदय हुआ है आज आप सबका, भाग्य उदय हुआ है आज आप सबका। भगवान के इस दरबार में किस्मत वाले ही आया करते हैं, किस्मत वाले ही आया करते हैं। आप सभी वो भाग्यशाली हैं जिस विद्यालय या ईश्वरीय परिवार में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, उसका परिचय देना मैं अपना परम कर्तव्य मानती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या ये ईश्वरीय परिवार, इसकी स्थापना 1936 सिंध हैदराबाद में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हुई। जिस विद्यालय का लक्ष्य है समस्त मानवता को मूल्य आधारित शिक्षा देकर के मानव चरित्र का उद्धार कर उन्हें देवतुल्य बनाना। आज सारे विश्व में 140 देशों में ये विद्यालय वट वृक्ष के भांति फैलकर अपनी सेवाएं दे रहा है। बहनों द्वारा संचालित ये विद्यालय अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। यूएनओ द्वारा 6 शांति पुरस्कार प्राप्त है इस विद्यालय को। बीज प्रभा के माध्यम से ये विद्यालय, ये संस्था अपनी सेवाएं दे रही है। उन्हीं बीज प्रभावकों में से एक प्रभाग समाज सेवा प्रभा के कॉन्फ्रेंस में आज आप सभी आमंत्रित है। अब मैं परमपिता परमात्मा शिव एवं आज के स्वागत सत्र की अध्यक्षा शिव स्वरूपा तपस्विनी मातृशक्ति परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी के अनुमति से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं उपलब्धियों से संपन्न आध्यात्म समाज सेवियों को दिव्य मंच पर सविनय आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और अपने अलौकिक प्रकंपन से मंच को दिव्यमान करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा परम आदरणीय संतोष दीदी जी, कृपया आप आए और दिव्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अवतार भाई जी, आप सभी मंच पर पधार कर मंच की शोभा बढ़ाएं। परम सम्मानीय राजयोगिनी शिव लीला दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी कमल दीदी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एन जिंदल जी पंचकुला, अभी मंच पर पधारे। साथिका नारंग जी, आप भी मंच पर पधारे। परम श्रद्धे परम आदरणीय राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी हमारे समक्ष कुछ समय के उपरांत मौजूद होंगी। आदरणीय कमल दीदी जी, जिंदल जी पंचकुला मेंबर ऑफ हरियाणा एंटी नारकोटिक्स कमिटी अभी मंच पर पधारे। हमारे मंच पर विशिष्ट विभूतियां मंच की शोभा बढ़ा रही है। हमारे आज के अतिथिगण असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। अखंड पवित्रता की शक्ति से संपन्न, ज्ञान और तपस्या के स्वरूप से सजे सजाए भगवान के ये फरिश्ते हम सबके सामने उपस्थित हैं। हमें अपनी शक्ति, अपने शुद्ध प्रकंपन देने के लिए आप सभी मंच पर पधार कर इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये मंच हमें संदेश दे रहा है, जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें, जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें। मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज का निर्माण करें, समृद्ध समाज का निर्माण करें। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा स्मृति से की जाती है, तो हम सभी 2 मिनट के लिए परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और जो भी दिव्य गीत बजेगा उस दिव्य गीत के बोल को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे।
जाता
परमात्मा स्मृति के पश्चात मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमारे दिव्य मंच का सम्मान बैच तुलसी का पौधा एवं दुशाला पहनाकर करें। हमारी परमादरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी को पुष्प गुच्छ देकर के उनका सम्मान हो रहा। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे इस मंच की शान, हमारे इस मंच की शान। मैं चाहूंगी कि कटु ध्वनि से आप भी इस स्वागत श्रृंखला में सहयोगी बनी रहे। स्वागत की श्रृंखला को और सुशोभित करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं अपने सुंदर शब्दों के द्वारा स्वागत वक्तव्य लेकर एक सरल, सहज और सफल व्यक्तित्व हमारे परम आदरणीय राजयोगी अवतार भाई जी, जिनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप प्रबंधक हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के, राष्ट्रीय संयोजक समाज सेवा प्रभाग के, संवाददाता राजस्थान पत्रिका UNI, सीनियर जर्नलिस्ट, अध्यक्ष सिरोही जिला पत्रकार संघ, महामंत्री राजस्थान पत्रकार परिषद, सदस्य हैं आबू पर्यावरण प्रतिरक्षा समिति के, कोषाध्यक्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, सदस्य हैं आप CLG शांति समिति पुलिस प्रशासन के, आप मानव सेवा संस्थान के भी सदस्य हैं, महामंत्री आबू विकास एवं जन कल्याण समिति, माउंट आबू से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पैदल यात्रा आपने की है, 54 बार आपने रक्तदान दिया है और बाल्यकाल से ही आपने परमात्मा के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर समाज और देश सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधार रहे हैं मंच पर वो व्यक्तित्व महान, पधार रहे हैं मंच पर वो व्यक्तित्व महान। निवेदन करती हूँ, जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान, जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान, आदरणीय अवतार भाई।
ओम शांति। सर्वप्रथम परमपिता शिव परमात्मा, जो अखिल ब्रह्मांड नियंता सर्वशक्तिमान हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ पर ये आयोजन आरंभ हो रहा है, उनका मैं आवाहन करता हूं और उनके साथ ही स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तथा अपने सभी पूर्वज जिनके सानिध्य में निरंतर ये कार्य चलता ही आ रहा है और दिन प्रतिदिन सफलता की बुलंदियों को छूते हुए ये सफलतम होता चला जा रहा है, उनका आह्वान करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन और सहस्त्र कोटिस वंदन करते हुए मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी दीदी संतोष दीदी जी, जो इस प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और वर्तमान में उनके नेतृत्व में समाज सेवा प्रभाग निरंतर प्रगति के पथ का अनुष्ठान करते हुए बुलंदियों को छूता चला जा रहा है, मैं दीदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि वंदन करता हूँ। आदरणीय बीके शिवलीला बहन जी, जो कि लंबे समय से इस समाज सेवा प्रभाग की सेवाओं को गतिमान करने के लिए अपने बीसों नाखूनों का जोर लगाती चली आ रही हैं, मैं बहन शिवलीला जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं श्री जस्टिस AN जिंदल साहब, जस्टिस AN जिंदल साहब जो सदस्य हरियाणा ये एंटी नारकोटिक कमीशन के सदस्य हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ जस्टिस जिंदल साहब। मैं आदरणीय राजयोगिनी मुन्नि दीदी जी जो कुछ ही समय में हमारे मध्य आने वाली हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। मैं रोटेरियन नारंग जी इंदौर से संस्थापक अध्यक्ष रोटरी क्लब डायमेटिक इंदौर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि हमारे मध्य आज यहां पधार करके अपने बहुमूल्य समय को यहां दे करके यहां आए हैं और हमें अपने महानतम विचारों से आप अवगत करवाएंगे, हमें संबोधित करेंगे। ऐसी महान विभूति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राजयोगिनी कमल दीदी जी जो कि इस आपाधापी के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराने के लिए शांति के सागर परमपिता परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित करने की विधा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी, ऐसी महान विभूति का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि मंच का संचालन होता है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है, मंच का संचालन करने वाली आदरणीय राजयोगिनी अंकिता बहन जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, कोटि वंदन करता हूं। और इस सभा में उमड़े अथाह जन सैलाब जो कि बहुत ही हर्ष और गौरव के क्षणों को दर्शाता है, आनंदित करने का और उत्साह को वर्धन करने के लिए बहुत ही अमूल्य क्षण है। आप सभी भाई बहने जो कि भारत और नेपाल से सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं और इस कार्य में आपने अपनी सहभागिता अर्जित करने का जो संकल्प किया है और उस संकल्प को साकार करने के लिए आप रास्ते में किसी प्रकार की कई तरह की तकलीफें आपको हुई होंगी, उन सभी को नजरअंदाज करते हुए आप यहाँ पधारे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगी अवतार भाई जी का। कहा जाता है दुनिया में बहुत कमाया क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में बहुत कमाया क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करूं दोस्तों कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। आज के समय में हर एक मनुष्य इस भौतिकता के पीछे एक अंधी दौड़ में शामिल है। आज जो भी कार्य कर रहा है वो सिर्फ इस स्थूल प्राप्ति के लक्ष्य से ही कर रहा है। किसी को मान चाहिए, किसी को शान चाहिए और किसी को धन चाहिए, लेकिन ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो जीवन में सुख होना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, जो जीवन का आनंद लेना चाहिए, वो शायद आज का मानव उससे कोसों दूर चला गया है। अब जरूरत है समय की और समय की ये पुकार है कि हमें लौटना होगा अपने मूल्यों की तरफ, अपने वास्तविक जीवन की तरफ, उस स्वर्णिम जीवन की तरफ जहाँ हर पल सुख था, शांति थी, आनंद था। और इसी के लिए ब्रह्मा कुमारी ने विशेष आज का जो सेशन रखा है जिसका मूल विषय ही है कि मूल्य को किस प्रकार से हम अपने जीवन में धारण करके एक बेहतर समाज की हम रचना कर सकते हैं, मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना किस प्रकार की जा सकती है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में आ रही है एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम में ही परमात्मा शिव समाया हुआ है और जो ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की खान है, हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी शिवलीला दीदी जी, आप सब जोनल कोऑर्डिनेटर सोशल सर्विस विंग गुलबर्गा है। आप पिछले 32 वर्षों से समर्पित जीवन जी रही है। आपने अपने ज्ञान के खजानों से, अपनी पवित्रता के बल से अनेकों आत्माओं का जीवन परिवर्तन किया है। आपने पूरे भारत वर्ष में अनेक स्थानों पर कॉन्फ्रेंसेस की है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपका व्यक्तित्व अनेक प्रतिभा से धनी है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। खुद के आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वो दीपक हैं जो औरों के खातिर जलते हैं, जो औरों के खातिर जलते हैं। परम आदरणीय शिवलीला दीदी जी,
ओम शांति। परमादरणीय दीदी जी और आदरणीय मंच, सेवा ही पूजा है, आराधना है, आरती वंदना है। ऐसे सेवा प्रिय, जनप्रिय, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय समाज सेवी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, ओम शांति। आज के विषय को देखते हुए मुझे एक गीत याद आ रहा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है हमारा। सत्य, अहिंसा और धर्म का जहाँ पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा। तो हम उस भारत के वासी हैं जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस भारत वर्ष में सर्व गुणों से संपन्न देवी देवताओं का वास था। हीरे जवाहर तो उनके महल थे, संपन्नता इतनी थी, दूध घी की नदियां बहती थी। गायन तो ऐसा है, शेर गाय एक साथ थे, सागर सीमित और सुखदायी था। ऐसे संपन्न समृद्ध भारत के हम वासी हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये सत्य है जिसके हम वंशज हैं। इसी सत्य को, ऐसे ही सत्यों की दुनिया को बनाने के लिए वो परमपिता परमात्मा शिव एक ऐसे महान हस्ती को चुना, जो महान हस्ती गुणवान, ज्ञानवान, भक्तिवान, प्रतिभावान, विद्यावान, ऐसे एक हस्ती जिन्हें हम दादा लेखराज के नाम से जानते थे, दादा लेखराज जी को चुना, जो हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, जिनके जीवन में मूल्यों का अपार धन था, अच्छाई का धन था और धनाढ्य भी थे। तो ऐसे हस्ती के द्वारा जिन्हें हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यहाँ पर हर जगह आप उनके भावचित्र को देखते हैं। तो ऐसे महान हस्ती के द्वारा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वो महान हस्ती पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आदर्शों और श्रेष्ठ मार्गदर्शन पर कदम पे कदम रखते हुए चल रहे, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सदाचार नैतिकता से संपन्न बनाए, ऐसे 11 लाख भाई बहनों का समृद्ध संपन्न परिवार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिनेमा, सिगरेट, शराब, कबाब, क्लब, पार्टी और क्या क्या है दुनिया में, इन सबसे मुक्त होकर, फुजूल खर्चों से मुक्त होकर अपने जीवन को संपन्न बनाए हैं, जिनका आर्थिक स्तर दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, ऐसे संपन्न, सरल, सात्विक जो जीवन बिता रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के तन मन धन के आधार से यह संस्था का कार्य चल रहा है। और जिस परिवार में आप यहाँ पधारे हैं, आप चारों ओर देखिए, आपको सादगी नजर आएगी, सफेद रंग होगा, सफेद वस्त्र होंगे और संपन्नता भरपूर है। अगर आप सुबह 3 बजे उठ करके भी डाइनिंग में जाएंगे तो आपको चाय, काफी, दूध सब कुछ मिलेगा। हम जिस दिन आए रात को 12 बजे, तो 12 बजे भी कई सौ एक बहने भोजन करने चले गए, रात को भी भोजन किए, तो संपन्नता समृद्ध परिवार यहाँ है, जिसका बेस है वैल्यू। जो व्यक्ति अपने जीवन में मूल्यों को धारण करता है, जिनका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है, भारतीय संस्कृति संस्कार जिनके अंदर भर जाते हैं, अवश्य उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ता जाता है, वो परिवार सुखी बनता है, समृद्ध बनता है। आज दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है, कमी है संस्कारों की, कमी है मूल्यों की। हम एक बार गांव-गांव की सेवा में गए थे, आपको आश्चर्य लगता है, कहते हैं गांव में जो भारतीय संस्कृति संस्कार अभी भी है, पर खेद की बात है, हम दिन में जाते थे तो कहते थे कि कोई घर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि काम करने के लिए गए हैं। हम कहते शाम को आएंगे तो कहते कोई होश में नहीं रहेगा। हम उनकी सेवा करने जाते थे, हमने कहा परवाह नहीं, होश में भी नहीं है तो भी हम सेवा करेंगे। जब सेवा करने निकले, हम स्टेज पर बैठे हुए थे, हमारे बाजू में भी कई बैठे हुए थे, कई होश में थे, कई होश में नहीं थे। जब हम प्रवचन कर रहे थे तो एक व्यक्ति सामने से गुजर रहा था, जिनके हाथ में एक पाउच था। हम तो सिर्फ दूध का पैकेट जानते थे, दूसरा कोई पाउच नहीं। तो व्यक्ति सुनते सुनते रुका, फिर जोर जोर से बोलने लगा कि आप प्रवचन तो कर रहे हैं कि ध्यान करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आप बता रहे अच्छी बातें, लेकिन मेरे बीबी बच्चे घर में भूखे हैं, अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, क्या आपका भगवान आंखें बंद करके बैठा है? हमारी बातें उन्हें सुनाई नहीं देती हैं, हमारा तकलीफ वो नहीं देखता है। तो बाजू जो बैठा था उसने मुझे कहा, बहन जी आप चुप रहिए, क्यों? तो कहता एक पैकेट अंदर है, एक पैकेट हाथ में है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, एक पैकेट अंदर है, एक पैकेट हाथ में है, और कहता है मेरी बीबी बच्चे भूखे हैं, पढ़ाई की बात तो दूर की है। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, फिर पूछा क्या आपका भगवान आंखें बंद करके बैठा है? तो मैंने कहा हाँ आंखें बंद करके बैठा है, आप पूछो ना क्यों बंद किया है। अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आंखें बंद करे तो हम और आप कहाँ जाएंगे? दुनिया को चलाने वाला वो खिवैया, वो भगवान आंखें बंद करके बैठे तो क्या होगा दुनिया की हालत आज जो हो रहा है? तो मैंने कहा पूछो क्यों? तो उसने कहा क्यों? तो हमने कहा इसलिए वो आंखें बंद किया है, आप जो कर रहे हैं वो देख नहीं पाता है, आप जो कर रहे हैं वो देख नहीं पाता है, इसलिए वो आंखें बंद किया है। एक पैकेट हाथ में है, एक पैकेट पेट में है, फिर कहते बीवी बच्चे भूखे हैं। पैसे नहीं है, नहीं पैसे हैं, लेकिन हमारी आदतें पैसे बचाने नहीं दे रही है। अगर वो आंखें खोले फिर दुनिया अच्छी बन जाए, इसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। दुनिया को बदलना आसान बात नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, इसलिए भगवान ने एक अच्छी सीख हमें दी है। खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। अब बहुत बार एक कहानी सुनी है, बच्चा बहुत गड़बड़ कर रहा था तो उसके पिता ने एक नक्शा को तोड़ कर दिया कि इसको जोड़ो। बच्चा जोड़ा, कैसे जोड़ा, पीछे एक व्यक्ति का चित्र था, तो व्यक्ति बना तो विश्व का नकाशा भी बना। अगर हम बन जाए, हम बदले तो दुनिया जरूर बदलेगी, लेकिन हर एक ये सोचते हैं मैं एक बदलूं तो क्या होगा। अगर बुराई के तरफ कदम रखते समय भी मैं एक बुराई के तरफ जाऊं, किसी ने नहीं सोचा। एक ने कदम रखा तो उसके पीछे और बढ़ते आज दुनिया कलयुग बन गया। ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा जब एक कदम आगे रखे तो 11 लाख भाई बहने आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमें गर्व है कि इन बुराइयों से, बुरी आदतों से वो मुक्त हैं, जिसके आधार से उनका हेल्थ, उनका वेल्थ सब बना हुआ है, उनका घर सुखी है, संपन्न है। आज भी दुनिया में मूल्यों के आगे हम झुक जाते हैं, लेकिन अपने अंदर मूल्य लाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। बाजार में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटी को नहीं। आज तक जो भी कंपनियां, इंडस्ट्रियां बनी हैं, उसका आधार है अपने मूल्य को, उन्होंने अपनी क्वालिटी को बनाए रखा तो आज तक बने हुए हैं। दिन दहाड़े धनवान बनने के लिए जिन्होंने अपने क्वालिटी को घटाया वो मिट गए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने अंदर वो मूल्यों को लाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हमें खुद को बदलना होगा। हम एक होटल में गए थे सौराष्ट्र में, ऐसा ग्रुप लेकर दिखाने के लिए गए थे, उसमें से एक महिला का पर्स वहाँ छूट गया, उसमें 50,000 थे। सब निकले, बस में आ गए, आधे रास्ते में आ गए थे, होटल के मालिक का फोन आया कि आपका किसी का एक पर्स छूट गया है। तो वो जो सफाई करने वाला बच्चा था, करीब 14-15 साल का बच्चा था, वो ला करके पर्स मालिक के हाथ में दिया। अगर वो चाहे तो 50,000 ले सकता था। हमने उसको 1,000 रुपए दिया, वो 50,000 रुपए हमें मिला, उसको 1,000 रुपए मिला। 1,000 बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर उसके प्रति जो दृष्टिकोण होगा सबका, जिंदगी भर उसको जो आशीर्वाद मिलेगा वो उसको हर घड़ी हर संकट से बचाएगा। आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता है, तो वो आशीर्वाद पाने के लिए हमें मूल्यवान बनना ही है। पहले शाम के समय पर कोई सत्संग में चले जाते थे, आज भी है कई जगह सत्संग चलते हैं, डिवाइन पार्क है, पर डिवाइन पार्क में जाने के बदले आज के बड़े वाइन शॉप में चले जाते हैं। शाम को देखिए जहाँ तहाँ वाइन शॉप भरा हुआ रहता है, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, दूसरा कोई हो, तो घर में हम मंदिर में दिया जलाकर दान धर्म करके बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, और आज पार्टी के नाम पे क्लब होटलों में घूमते हैं, क्या क्या करते हैं। अपने आप को बदलना होगा, भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कार को अपने बच्चों में लाना होगा, भरना होगा, उसके लिए आप सबसे निवेदन है। आपके घर में कोई एक दो चार मेहमान आते हैं, एक दिन रहते, दो दिन रहते, तीसरे दिन कैसे रहेंगे आप? कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? सच बोलिए, कैसा व्यवहार करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे क्या? आपके चेहरे पर सिकन होगी। और यहाँ आप देखिए, हर दिन 10-20 हजार यहाँ भाई बहने, मेहमान नहीं कहेंगे, ये बाप का घर है, भगवान का घर है, 10-20 हजार भाई बहने यहाँ रहते हैं। पर यहाँ के जो भाई बहने अथक सेवाएं देते हैं, उनके चेहरे पर कभी आप सिकन नहीं देखेंगे, उनका मूड बदलते हुए नहीं देखेंगे, उसी खुशी से, उसी आनंद से, उसी उमंग उत्साह से वो सेवा करते हैं। ये सच्ची सेवा है, इसका बेस है उनके अंदर, भगवान बाप ने कूट कूट कर वो मूल्य भरा है इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से। तो वो जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है, सुबह 2:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो करते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करेंगे, कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे जो निरंतर करते रहते हैं उन अच्छाइयों को, उन मूल्यों को थोड़ा सा अपने अंदर लाने के लिए। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप थोड़ा सा समय दीजिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार को सुखी संपन्न बनाएगा और समाज में परिवर्तन लाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवलीला दीदी जी का। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस विषय को सार्थक किया है। निश्चित रूप से दो ही शब्दों का खेल है। जब हम कहते हैं कि ये काम मुझे करना है, तो वहाँ ही हमारे मन की भावनाएं बदल जाती हैं। और जब हम कहते हैं ये सेवा मुझे करनी है, तो स्वतः ही हमारी स्थिति बहुत ऊपर उठ जाती है। हम बस ये देखें कि हम अपने जीवन में सेवा का भाव रखते हैं, यहाँ में हमेशा ये लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है जो मुझे करनी है। जहाँ हमने जिम्मेवारी शब्द का यूज किया, ड्यूटी शब्द का यूज किया, कहाँ ना कहाँ अंदर में वो बोझ का अनुभव होगा, वो तनाव का अनुभव होगा, भारीपन का अनुभव होगा। लेकिन जब बात आती है सेवा की, तो सेवा सदैव ही सुख देती है, आनंद देती है और दुआओं का साधन बनती है। हमें कोशिश यही करनी है कि हमें अपने जीवन को सेवा के रूप में ही बिताना है, सच्चे सेवाधारी बनना है। स्वयं की भी सेवा करनी है, परिवार की भी सेवा करनी है और समस्त विश्व की सेवा करनी है। इसी लक्ष्य के साथ हम सभी विशेष 5 दिन यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा दीदी जी ने बताया कि यहाँ पे जितने भी हमारे राजयोगी भाई या राजयोगी बहनें अपनी सेवाएं दे रहे, उनके जीवन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जितना शब्दों का प्रभाव नहीं होता, उतना कर्मों से व्यक्तित्व सीखता है, व्यक्ति सीखता है। तो यहाँ आपको देखकर सीखने का बहुत मौका मिलेगा। एक अनाउंसमेंट है, GJ12FC0084 कार है जो मेडिटेशन हॉल के सामने पार्क हुई है, कृपया इस कार को वहां से हटा लें। GJ12FC0084। अभी आप सभी समाज सेवियों का, यूं कहो निस्वार्थ समाज सेवियों का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप, जो अपने संगीत के मधुर झनकार से आप सभी का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। हमारे आदरणीय राजयोगी सतीश भाई जी, भानु भाई जी, रमेश भाई जी, जयराज भाई जी, धर्मिष्ठा बहन एवं श्रद्धा बहन, एक बार जोरदार हम सभी पहले इनका स्वागत करें, फिर ये संगीत के माध्यम से हमारा स्वागत करें।
सच्चे समाज सेवकों का, सच्चे समाज सेवकों आप स्वीकारो प्रभु प्यार और अपनों का अपने घर में है स्वागत और सत्कार। एक बार जोरदार ताली बजा के आप अपना स्वागत कर लीजिए।
आबू धरती पर, आबू धरती धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार, मूल्य आधारित सेवा से समृद्ध हो विश्व परिवार। सच्चे समाज सेवकों स्वीकारो सत्कार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन बारंबार।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुर वाणी ग्रुप का, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से, सुंदर गीत के माध्यम से हम सभी का स्वागत किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस एन जिंदल जी का, जो मेंबर है हरियाणा एंटी नारकोटिक्स कमिटी। आप ब्रह्म कुमारी से पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, और आपका विशेष प्यार है इस परिवार से। आप डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं और आपने अपनी सेवाओं से कई परिवार को टूटने से बचाया है। आपकी सेवा निस्वार्थता से भरी हुई है। आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से परमात्मा को भी प्रभावित करता है, इसलिए आपका अक्सर करके भगवान की धरनी पर आना होता है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी में दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है। रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को मिलता है। मैं आदरणीय जस्टिस एन जिंदल जी को उनके उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम बड़े बात ज्ञात है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर काम चलने से हो रही है। मैं आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको दाद देता हूँ कि आप इस डिस्टर्बेंस की वजह से भी आप हिले नहीं हैं और आप बड़े प्रेम से और निश्चय से सभी वक्तादेव को सुन रहे हैं। इसकी मजबूरी है, यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, इसकी वजह से ये दिन रात काम नहीं होगा। मुझे अवतार भाई ने बताया कि ये काम ना हम दिन रात ना करें तो ये काम पूरा नहीं होगा, तो इस डिस्टर्बेंस के से खेल है। तो आगे मैं सबसे पहले बहन संतोष दीदी, अवतार भाई, शिवलीला बहन और बाकी स्टेज पर विराजमान और नीचे बैठे सभी वरिष्ठ भाई बहनों को नमन करता हूँ और उनको ओम शांति कहता हूँ। और बाकी सारे हॉल में बैठे बहन भाइयों को और समाज सेवियों को भी मैं नमन करता हूँ। आपने देखा कि आपने आज इतना सुंदर विषय जो दीदियों ने चुना है उसके बारे में मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज जरूरत है ऐसे विषय की। ठीक है कि समाज में कुछ सेवाएं हो रही हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं तो वहाँ लंगर वगैरह लगाए जाते हैं, या हम वृद्ध आश्रम में जाते हैं, कहीं अंध विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ भी सेवाएं होती हैं, मगर वो सेवाएं काफी नहीं हैं, क्योंकि आज आप देखिए समाज किस तरफ जा रहा है। समाज में पहले जो सत्य हिंसा के सच्चाई पवित्रता के गीत गाए जाते थे, आज की युवा पीढ़ी वो गीत भूल गई है, वो दूसरी ओर जा रही है। लोग हम डेली देख रहे हैं शहरों में और गांव में भी, गांव में चिट्टा इतना बिक रहा है, इतना नशा फैल गया है कि लोग नशे में मर रहे हैं। डेली अखबार में खबरें आती हैं कि नशे से चिट्टे से इतने लोग मर गए। ऐसे ही इतने स्कैम हो रहे हैं, जो जितना मतलब धन लूटा जाता है वो कोशिश करते हैं लोग कि लूट ले, सरकार का पैसा है। कोई पुल बनाते हैं, पुल गिर जाता है, कोई सड़क बनाते हैं, सड़क शाम को वो नहस तहस हो जाती है। ऐसे ही कोई भी ऐसा काम करते हैं, कामों में लोग अब अपना माया के चक्कर में, इस लालच में अपने आप को भूल जाते हैं, वैल्यूज को, ओरिजिनल वैल्यूज को भूल जाते हैं। आगे बच्चे सुबह उठकर बच्चों को यही समझाया जाता था कि अपने पेरेंट्स को नमस्कार करो या उनके पांव पड़ो, या उस बच्चों को ये बताया जाता है कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो। वो तो बच्चे भूल ही गए हैं। अगर अब बच्चे डिस्को की तरफ चल पड़े हैं, बच्चे इस इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से और ही रास्ते अपना लिए हैं और उनको कुछ नजर नहीं आता, वो सारी सेक्स लाइफ में उड़े जा रहे हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम उन लोगों को उन लोगों की तरफ ध्यान करें, उनकी सेवा, उनको सेवाएं दें, उनको चेक करके उनको सीधे रास्ते पर ले आएं, उनको सोसाइटी में उनको सच्चा रास्ता दिखाएं। यहाँ पर कि बहुत लोग समाज से भी बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दूर दूर से विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी आजकल गलत रास्ते पर चल पड़ी है, उनको उस रास्ते से वापस लाकर सीधे रास्ते लगाया जाए, उनको वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, उनको वैल्यूज सिखाई जाए, उनको प्यार सिखाया जाए, स्वच्छता सिखाई जाए, पवित्रता सिखाई जाए, थोड़े बहुत ज्ञान सिखाया जाए। तो ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय इस तरफ क्या बहुत से तरफ काम कर रहा है। ये सबसे सुंदर और सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है जो कि हर सोसाइटी की इवल्स की तरफ ध्यान रखती है, और चाहे वो बेटी बचाओ का हो, चाहे वो पेड़ बचाओ का हो, चाहे वो एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन का हो, चाहे वो नशों का हो, ये हर जगह अपने पूरी सेवाएं, बहनें पूरी सेवाएं दे रही हैं, अपनी पूरी सेवाओं से सोसाइटी को अपनी लाइन पर ले आने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बहनों की यहाँ पर भी और अपने अपने जगह पर जहाँ भी आश्रम है उनके साथ जुड़ के सोसाइटी को बचाने के लिए, उनको सीधे रास्ते ले आने के लिए, उनको वैल्यू सिखाने के लिए, उनको हम मददगार बने उनको उनके लिए। तो आप आज दूर से, आप लोग दूर से, देश से, विदेश से आए हैं, आज थक आपको थकावट भी बहुत है, तो आप आज रेस्ट भी करेंगे, तो आप, मैं तो ये चाहूँगा कि आप यहाँ से तीन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षाएं लेकर जाएं और जाकर आप फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सेवाएं प्रदान करें। और ये मैं इतने लफ्ज में कहता हुआ मैं आपको फिर दोबारा ये अपनी निम्रता बेनती करता हूँ कि आप अपने समाज में जाकर के ये नशों पर लगाम डालने के लिए अपनी कोशिशें बरकरार रखें। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। कोई कहता है कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है हम विद्वान बनेंगे, लेकिन क्या कभी किसी ने ये कहा कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनेंगे? जरूरत है एक अच्छे इंसान बनने की, और जो अच्छा इंसान होगा वो आप ही, जिसको जो चाहिए, जो सांसारिक सुख भी चाहिए, मानसिक सुख भी चाहिए, वो दोनों ही प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारा स्लोगन है, जिस ध्येय पर, जिस अस्तित्व पर ये परिवार, ये विद्यालय कार्य कर रहा है, उसका सार है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। बदलाव की वो पहली कड़ी हम स्वयं होने चाहिए। इसलिए आज इस संसार में हम देखते हैं, जब बात बदलाव की होती है तो इशारा उंगली हम दूसरों की तरफ उठा लेते हैं और कहते हैं कि उनको बदलना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और हम भूल जाते हैं कि कहीं ये तीन उंगली हमारे स्वयं की तरफ है। इसलिए अगर हम बदल गए तो निश्चित रूप से विश्व बहुत जल्दी बदल जाएगा। और इसी विजन को लेकर परमात्मा ने हमारे भीतर ये ताकत दी है, ये शक्ति दी है, जो एक पान का बेड़ा उठाकर ब्रह्मा कुमारी इस पूरे विश्व में कार्य कर रही है कि इस धरा को हमें स्वर्णिम बनाना है, इस धरा को हमें सुखमय शांतिमय बनाना है। ये एक ऐसी धरा बनेगी जहाँ पर मूल्य आधारित जीवन होगा, जहाँ हर घर में सुख शांति नन्हे कृष्ण और राधा मिलेंगे। वो हमारा समय बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये समय ही परिवर्तन का है। ये कलयुगी दुनिया के बाद एक बहुत सुंदर स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। कहा जाता है, साइंस की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसने अपने आप को समय के साथ बदल दिया वो उस समय में जीता है, और जिसने नहीं बदला वो नष्ट हो जाता है। ये समय की पुकार है कि अब हमें बदलना होगा, क्योंकि जब अति होती है तो अंत भी निश्चित है। हम देख रहे हैं आज चारों तरफ विकारों की अति हो चुकी है, हर तरफ दुख और अशांति छाया हुआ है, लेकिन इसी समय ही हमें अब आगे बढ़ना होगा और अपने भीतर एक नव प्रकाश धारण करना होगा। हमें अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त करना होगा। जब हमारे भीतर वो संस्कृति आएगी तो निश्चित रूप से भारत को वो गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, विश्व गुरु बनेगा वो भारत। इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति अपने शब्दों में होनी चाहिए, आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में होनी चाहिए, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं, बाढ़ से नहीं। अभी हम सभी का पुनः स्वागत करने के लिए हमारे बीच में आ रहा है एक डांस ग्रुप, अमरावती डांस ग्रुप, जो श्री कृष्ण का नृत्य लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार कल्चर ध्वनि से इस डांस ग्रुप का हम सभी स्वागत करेंगे। नारायणी, लवण्या और तन्वी बहन हमारे बीच में ये डांस ग्रुप लेकर आ रही हैं।
Down the कुंडल शवन माथे तिलक कुंडल शवन माथे तिलक पग परत बाजत पैजनी नूपुर झनक झन झन करत नूपुर झनक झन झन करत बाजी मधुर धुन बांसुरी बाजी मधुर धुन बांसुरी बांसुरी श्री कृष्ण निरत तुंग 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 दिग दिग तुंग 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 दिग दिग तुंग तुंग दिग दिग तुंग 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 दिग दिग Tunga 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 ताल जय जय ताल बाजत दीन धनी जप झांझरी धन धन कहत ब्रज श्याम धन 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 कहत ब्रज श्याम धन ब्रज धाम सुख बरसत झरी ब्रज धाम सुख बरसत झरी बरसत झरी बरसत झरी कृष्ण निरगत ढूंग ढूंग राम दिग दिग जग धरी संग राधे गोपी उमंग भरी भरी लेत परता पद धरी संग राधे गोपी उमंग भरी भरी लेत परता पद धरी पद धरी पद धरी श्री कृष्ण निरत ढूंग 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 ढूंग
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सार्थिका नारंग बहन जी को। आप चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी क्लब इंदौर डायनेमिक से हैं। आप अपने बाहर व्यवसाय को साथ ही साथ अपने घर को बहुत ही सुचारू रूप से संभाला हुआ है। आप अनेक प्रतिभा की धनी हैं। आपने चार्टर्ड प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वुमेन इन रोटरी असिस्टेंट गवर्नर एडविन इंटर डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज पद का कार्य भी किया है। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपके उद्बोधन के लिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपने आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, अपने आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। इस स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए।
ओम शांति। राजयोगिनी संतोष दीदी, राजयोगी अवतार भाई, राजयोगिनी शिव लीला बहन जस्टिस ए एन जिंदल जी, राजयोगिनी कमल बहन, राजयोगिनी अंकिता बहन तथा सदन में उपस्थित दूर दूर से पधारे समस्त समाज सेवी भाइयों एवं बहनों को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले मैं राजयोगिनी संतोष दीदी तथा बीके अवतार भाई जी का एवं समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस दिव्य स्थान पर उपस्थित होने का, इस सुंदर आयोजन में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। निश्चित रूप से ईश्वर की असीम कृपा के फलस्वरूप मुझे यह अवसर मिला है परम पिता परमेश्वर का हृदय से आभार। कितने सुंदर विषय पर वार्तालाप चल रहा है, मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना। कोटि कोटि अभिवंदन ईश्वर का कि आपने हमें मानव योनि में जन्म दिया, जहां हमें सेवा के संस्कार मिले, वरना पशु योनि में ना तो गुरु का सानिध्य है, ना धर्म का साथ, ना मोक्ष का मार्ग है, ना गीता का ज्ञान, ना कर्म की शुद्धि है, ना सेवा की बुद्धि है। पुनः धन्यवाद परम पिता का कि हमें मानव रूप में जन्म लिया, क्योंकि हमें मिली है निष्काम कर्म की राह, सेवा का संकल्प, प्रभु भक्ति का रस मिला है, माँ का आशीष मिला है, गुणी जनों का सानिध्य मिला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय ज्ञान के साथ हमें जन्म मिला है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपना चरित्र निर्माण ऐसा करें जो हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करे। प्यासे को पानी अवश्य पिलाएं, भूखे को भोजन भी अवश्य कराएं, किंतु कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि कोई प्यासा न रहे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। समाज के हर व्यक्ति को इस काबिल बनाना कि वे स्वयं अपना सम्मान अर्जित कर सकें, सुदृढ़ समाज की संरचना में अपना योगदान दे सकें। एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति किसी दूसरे पर आश्रित न रहकर, किसी दूसरे की तरफ मदद के लिए न देखकर, अपने पैरों पर स्वयं आत्मसम्मान से अपनी आजीविका कमा सके। किसी को आत्मनिर्भर बनाना स्वार्थ के संकीर्ण दायरों को खत्म करना है। संवेदनशील विचार, संवेदनशील व्यक्तित्व और श्रेष्ठ व्यवहार समाज की मुख्य आधारशिला है। हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी होगी जो पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील हो, शिक्षा के लिए लगनशील हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके और दूसरों की पीड़ा को समझ सके। हमें ऐसे दृढ़ समाज की संकल्पना करना ही श्रेष्ठ मानव का धर्म है। हमारे शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हैं जब मानव कल्याण के वशीभूत किसी ने अपना सर्वोच्च हंसी खुशी न्योछावर कर दिया। हम बात करें महर्षि दधीचि की, तो जब समाज पर संकट आ पड़ा तो उन्होंने बिना किसी फल की इच्छा के अपना सर्वस्व दान कर दिया, उन्होंने अपनी अस्थियां तक दान कर दी। शिव शंकर भोलेनाथ ने गरल को स्वीकार किया और नीलकंठ हो गए, अमृत सभी में बांट दिया। ये संस्कार तो हमें जन्म से मिले हैं, ये सेवा के, ये समाज की पीड़ा को समझने के संस्कार हमें जन्म से मिले हैं। हमें इन्हें पहचानना होगा, इन पर कार्य करना होगा, किंतु सेवा का स्वरूप क्या हो इस पर फिर से एक बार विचार करना होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, डू नॉट गिव हिम ए फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। डू नॉट गिव हिम ए फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। मतलब आप किसी की एक बार मदद कर देंगे, दो बार मदद कर देंगे, बार बार मदद कर देंगे, लेकिन इससे बेहतर है कि किसी को स्वावलंबी बना दिया जाए, उसे आत्मसम्मान से जीना सिखा दिया जाए, फिर वो अपनी राह खुद संभाल लेगा। मैं माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से आती हूँ। सुदृढ़ समाज की संकल्पना, सुदृढ़ समाज की स्थापना, इस विषय पर माँ अहिल्या की दूरदर्शी सोच का एक वाक्या साझा करना चाहूंगी। युद्ध की विभीषिका थी, चारों तरफ अपने राज्य को दुश्मनों से बचाने के लिए युद्ध चलते रहते थे, और एक कुशल शासक माँ समान अहिल्या देवी ने जब देखा कि उनके राज्य के अधिकार पुरुष युद्ध भूमि पर रहते हैं और पीछे उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझता रहता है, महारानी ने उन्हें इस विभीषिका से निकालने का संकल्प लिया। वे बहुत विचलित रही, वे चाहती थी तो अपना किसी भी तरह से उनकी आर्थिक मदद कर सकती थी, लेकिन वे चाहती थी कि ये एक अस्थाई उपाय है। वे नहीं चाहती थी कि उनकी प्रजा किसी के आगे हाथ फैलाए, किसी के आगे दया की भीख मांगे। उन्होंने बहुत विचार किया और उन्होंने कला को इसका माध्यम बनाया। उन्होंने देखा
कि उनके राज्य में बहुत से बुनकर हैं, लेकिन उनकी कला को एक नया आयाम देना चाहती थी। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, दक्षिण से, गुजरात से, बुरहानपुर से कुशल कारीगरों की एक टीम बुलाई, उन्हें अपने राज्य में रहने का न्योता दिया और उनकी कला को अपने बुनकरों को सिखाने का आदेश दिया। आदेश क्या दिया? उन्हें आह्वान किया। इन बुनकरों ने आपस में मिलकर एक नए कपड़े का निर्माण किया, जो आज माहेश्वरी कपड़े के नाम से जाना जाता है। माहेश्वरी कॉटन कपड़ा, माहेश्वरी सिल्क कपड़ा। 18वीं सदी में शुरू हुआ यह यज्ञ आज विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। माहेश्वरी कपड़े को किसी और पहचान की जरूरत नहीं है, तथा कला का साथ इन कारीगरों को सैकड़ों साल बाद भी आत्मसम्मान से जीवन जीने की राह दिखा रहा है। तो हम सभी कोशिश करें कि हमारी सेवा भी कुछ ऐसी हो जो समाज में एक नई रोशनी को जन्म दे। मैं विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ रोटरी से जुड़ी हूँ। रोटरी भी संकल्पित है विश्व से पोलियो को मिटाने के लिए, शिक्षा के नए अवसर बनाने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ब्रह्मा कुमारी भी संकल्पित है मानव को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने हेतु, मानव चेतना को, मानव अस्तित्व के उच्च आदर्शों को पुनर्स्थापित करने हेतु। तो इस आशा के साथ कि रोटरी और ब्रह्मा कुमारी मिलकर समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करेंगे और हम सब मिलकर एक सुसंस्कृत सुदृढ़ समाज की नींव रखेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आज के एक अनाउंसमेंट है कि कोई भी अभी हॉल से बाहर नहीं जाएगा।
कार्यक्रम के पश्चात आप सभी को ईश्वरीय सौगात मिलेगी, इसलिए आप सभी यहाँ ही बैठे, बस कुछ ही समय शेष है कार्यक्रम को पूरा होने में। अब मैं आवाहन करने जा रही हूँ आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसी तपस्विनी शिव स्वरूपा, जिनके स्वरूप में ही परमात्मा शक्ति समाई हुई है, जिनके चेहरे से ही हमें अलौकिक दिव्यता का तेज नजर आता है, प्राप्त होता है, जिनका जीवन मानव सेवा और विश्व सेवा के लिए समर्पित है, जिनका मन के एक एक विचार समस्त विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना से संपन्न है, परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, जो कि ज्वाइंट चीफ ब्रह्म कुमारी की हैं, साथ ही साथ आप सोशल सर्विस विंग की चेयरपर्सन हैं, आप महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जोनल इंचार्ज भी हैं, अनेक जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी आप फरिश्ते की तरह बिल्कुल हल्की हैं, यूं कहें आप डबल लाइट फरिश्ता हैं। आपके वरद हस्तों के नीचे सैकड़ों बहनों ने ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त कर पूरे विश्व में परमात्मा प्रत्यक्षता का कार्य किया है और कर रही है। आपकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति से आपने ईश्वरीय कार्य को सदैव आगे बढ़ाया है। ऐसी महान विभूति का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाल ब्रह्मचारिणी, ये साक्षात देवी हमारे बीच मौजूद हैं। दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें, वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें। आप तो अपने आप में शहंशाह है दीदी जी, आप तो अपने आप में शहंशाह है दीदी जी, वो शख्सियत है आप, जिन्हें सब सलाम करें, जिन्हें सब सलाम करें, आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी।
ओम शांति, सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आप सब इस डायमंड हॉल में विराजमान हमारे प्यारे भाई और बहन, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत दूर दूर से विशेष इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सब हमारे भाई बहन समाज सेवी पधारे हुए हैं। मैं समझती हूँ आप सभी जो भी आए हैं यहाँ आने में आप लोगों को तकलीफ तो जरूर होगी, परंतु यहाँ रहने में किसी को तकलीफ होगे तो बता सकते हैं, उनको सैल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग संस्था में नहीं आए हैं परंतु अपने घर में आए। हमेशा कहा जाता है भगवान का घर ये हमारा घर, क्योंकि वो हम सभी का पिता है, तो पिता का घर ये बच्चों का घर होता है। आप लोग सब यहाँ पधारे आपको देख के हमें बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत हर्ष। आज विशेष जिस लक्ष्य को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हैं, समाज सेवाएं तो आप कर रहे हैं, परंतु और भी समाज सेवा को जोर से आगे बढ़ाया जाए, समाज में परिवर्तन हो, यही सर्व का लक्ष्य है कि हमारा समाज सुखी होवे, शांत होवे, सदा सर्व खुश रहे। परंतु एक विशेष बात ये ध्यान में देने की है, ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसका ये स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हमको समाज को सुधारना है तो हमें अपने से चालू करना पड़ेगा। जब हम खुद से चालू करते हैं प्रक्रिया, तो जैसा कर्म हम करते हैं हमको देख करके और करते हैं। इसीलिए हमारे को हमारे में क्या परिवर्तन लाना है, इस बात के लिए हमें जरूर सोचना है। क्योंकि आज हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति इसके लिए टाइम नहीं निकालता है कि मुझे क्या परिवर्तन लाना है, मेरे अंदर कौन सा परिवर्तन आना चाहिए। तो आप लोग जो यहाँ पर चार पांच दिन हैं, उसके लिए स्व का दर्शन करके और स्व के अंदर कोई ना कोई ऐसा महान परिवर्तन ला करके, क्योंकि जब तक हम अपने को चेक नहीं करते हैं तो अपने अंदर चेंजेस भी नहीं ला सकते। आजकल हम देखते हैं कि मनुष्य की दूर की जो दृष्टि है वो बहुत तीक्ष्ण हो गई है और नजदीक की जो दृष्टि है वो वीक हो गई। हर एक के घर में दो चीजें होती है, एक होता है आईना और दूसरी होती है विंडोज। आप खुद भी समझ सकते हैं आईने में किसको देखा जाता है और विंडो में किसको देखा जाता है। आईने में हम अपना मुखड़ा देखते हैं और विंडो में हम बाहर देखते हैं। तो आजकल मनुष्य बाहर देखने का आदी हो गया है, खुद का मुखड़ा देखने का उसको फुर्सत नहीं है। वैसे गीत गाते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो हे प्राणी तू अपना मुखड़ा देख, किस में देख, ज्ञान के दर्पण में अपना मुखड़ा देख कि मेरे को जिसने इस सृष्टि के ऊपर भेजा है, जिस लक्ष्य से भेजा है, उस लक्ष्य की मैंने कहां तक पूर्ति की है। अभी तक आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे विचार सुने, समाज सेवा माना ही निस्वार्थ सेवा, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो, ना मान ना शान ना नाम। अगर ये भी बुद्धि में रख के हम समाज सेवा करते हैं कि हम समाज सेवा करें और हमारा नाम हो जावे, हमारा बड़ा समाज में मान हो जावे, ये भी स्वार्थ। समाज सेवा वही कर सकता है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने में अपने को खुश समझता है। अगर हम समझते हैं कि हम सेवा करें और हमारा नाम होवे, तो ये सेवा नहीं परंतु व्यापार। व्यापार में हमेशा देना और लेना होता है, सेवा में हमेशा त्याग होता है। तो त्याग की भावना अगर हमारे अंदर है, त्याग से ही हम अनेक आत्माओं का भाग्य बना सकते हैं, उनका जीवन बना सकते हैं। और जीवन बनाने के लिए बहुत सरल तरीका है, स्व के अंदर परिवर्तन लाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हमारे पास ये पाठ पक्का कराया जाता है, बहुत सरल तरीका है अपने को परिवर्तन करने का। हम लोग इधर उधर वो चित्र भी देखते हैं, यहाँ एक पाठ इस बात का पक्का कराया जाता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और परमात्मा आके कहता है बुरा मत सोचो। तो ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इन कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसमें भी सबसे पहले आप देखेंगे तो कहा जाता है बुरा मत सुनो। हम देखते हैं मुख को भी दरवाजा है, अगर मुझे नहीं बोलना है तो मैं मुख बंद कर सकती हूँ। आँखों को भी दरवाजा है, मुझे अगर नहीं बुरा देखना है तो मैं आंखें बंद कर सकती हूँ, परंतु कानों को दरवाजा नहीं। दो कान आप लोगों को मालूम है, जब कोई भी समाज के अंदर रैट्स होते हैं, घमसान होता है, आप अगर बाजार में जाएंगे तो सबसे पहले क्या बंद करते हैं? बाजार में अगर हम जाते हैं तो जिस समय घमसान होता है तो क्या बंद करते हैं? दुकानें बंद करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फटाफट दुकानदार क्या करते, सब शटर गिराना चालू कर दे। तो उसी प्रकार परमात्मा कहता है अगर तुमको अच्छा बनना है तो ये दो कान दू कान इनको बंद करो। बंद करो माना क्या करो? बुरा सोचना बंद करो। अगर हम बुरा सुनना बंद करो। अगर हम बुरा सुनते हैं, जो सुनते हैं वही हमारे को सोच चलता है, जो सुनते हैं वही हमको दिखता है। इसीलिए सबसे पहले इन कानों को बंद करो और कभी भी किसी की बुराई कभी भी मत सुनो। बुराई सुनने के बजाय आप औरों की अच्छाई सुनो, औरों की विशेषताएं देखो, औरों की विशेषताएं सुनो। तो जितना जितना हम अच्छा सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा हमारे अंदर संकल्प चलते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही कभी कभी मुख से निकल भी जाता है। तो इसीलिए बुरा सोचना भी बंद करो, बुरा देखना भी बंद करो, अर्थात एक दो की कमी कमजोरी को मत देखो, एक दो की अच्छाई को देखो। क्योंकि हमारे भारत में ये प्रथा है, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो कहा जाता है उसको कभी भी देखना नहीं डायरेक्ट, अगर देखेंगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम्हारे को ग्रहण लग जाएगा। तो एक दो की बुराइयों को देखना अर्थात आत्मा को ग्रहण लगना, क्योंकि कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगी। इसीलिए तो हमारे पास हमारी आदि संस्कृति तो वो है, जो घर घर में देवी देवताओं के चित्र लगाए जाते, मूर्तियां रख दी जाती हैं, जो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, उनको देख करके उनसे वो अच्छाई सीखते हैं, गुण सीखते हैं। अभी समय परिवर्तन हो गया है, बाहर की हवा यहाँ लग गई है, इसीलिए घर में ऐसी चीजें रखना समझते ये पुराने जमाने के लोग हैं। पर वास्तव में देखा जावे जो भी हम देखते हमारे आगे आदर्श महान होके गए हैं, उनको परिवर्तन करने के लिए उनके बड़ों ने कितनी मेहनत किया हुआ है, माता पिता ने, खास माता ने उनको कैसी शिक्षाएं दिया है, जिन शिक्षाओं के कारण आज हम देखते महात्मा गांधी महात्मा बन गया, शिवाजी की माता उसको रोज कैसी अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके उसको शूरवीर बना दिया। तो उसी प्रकार जब हम अपने अंदर ये सब अच्छी बातों को देखते हैं, मुख से अच्छी बातों को वर्णन करते हैं तो बच्चों के ऊपर भी वही संस्कार होते हैं, क्योंकि आज का जो युवा है वही कल का एक आदर्श नागरिक बनने वाला है। तो हम बच्चों को सिर्फ जन्म नहीं देते माता पिता, परंतु एक व्यक्ति को तैयार करने का उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है। अगर इस बात को ध्यान में रख करके और पीछे हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, खुद की तरफ ध्यान रखते हैं, तो हमको देख करके वो भी सीखते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। स्थूल रीति से जो भी समाज सेवा करते हैं बहुत अच्छा है, उसमें भी बड़ा अपने आराम का भी त्याग करना पड़ता है, धन भी लगाना पड़ता है, समय भी लगाना पड़ता है, वो तो वो बहुत लोग करते हैं, उनकी महानता है। परंतु उसके साथ साथ अगर उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया जावे, उनके अंदर से अगर जो बुराइयां हैं वो निकाल दी जावे, तो उनका जीवन जो है वो एक श्रेष्ठ जीवन बन सकता है, आदर्श जीवन बन सकता है। क्योंकि स्थूल सिर्फ उनको साधन देने से उनका जीवन नहीं सुधरता है, परंतु उनके अंदर से जो बुराइयां हैं वो अगर निकालेंगे तो क्या होता है, उनका जीवन सदा के लिए सुधर सकता है। एक बार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो जो पेपर वाले थे रिपोर्टर, उन्होंने हमारी दादी से पूछा, आप गरीबी हटाने के लिए क्या करते हो, जो सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम है भारत में। तो उनको बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो, अगर हम किसी गरीब को कुछ पैसा देते हैं कितना समय चलेगा उसको, ज्यादा समय तो नहीं चलता, परंतु एक व्यक्ति है उसमें समझो शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, इधर उधर रगड़ने की आदत है, परंतु जब हम उसको ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और उसकी वो बुराई छूट जाती है, समझो रोज पांच जो वो मास में 10,000 रुपए कमाता है, पर घर में 10 नहीं देगा, घर में वो उसमें से 2-3 हजार निकाल करके पीछे ही देता है, वो फिजूल खर्चे में उसमें क्या होता है, उसका सारा खर्चा हो जाता है। परंतु जिस समय उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो उसकी ये फिजूल खर्ची बच जाती है सदा के लिए, उसका समझो 3,000 रुपए पगार बढ़ गया, वो घर में लगाएगा, अपने परिवार में लगाएगा, समाज सेवा में लगाएगा, जिससे क्या होता है उसका भी जीवन सुधरता है और साथ साथ में समाज का भी जीवन सुधरता है। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जो बुराइयां हैं वो निकालने में हमें मदद करने की आवश्यकता है। वो छोड़ना चाहते हैं सभी। हम लोगों ने जब शुरू में पदयात्रा निकाली उस समय 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया था कि आप 10 बुराइयों में से एक बरस के लिए कोई न कोई बुराई छोड़ो। कन्याकुमारी से लेकर के सारे भारत में, दिल्ली तक, बंबई तक बहुत पद यात्राएं निकाली। पहले हम लोगों ने ऐसा समझा था ये कौन छोड़ेगा, परंतु हमने देखा जब हमारे भाई बहन एक एक गांव में गए, कस्बे में गए, शहरों में गए, एक एक स्कूलों में गए, ऑफिस में गए, पब्लिक फंक्शन रखे और लोगों को जब ये आह्वान किया तो लोगों ने खुशी खुशी से कोई ना कोई अपनी बुराई का दान दी। और जब ये आप कहेंगे उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, जरूर जब ये लिख करके देते हैं तो घड़ी घड़ी उनको अंदर में आता है, अरे हमने लिख के दिया है, हमने छोड़ा है, इसीलिए हमें उसकी बात का ध्यान रखना। तो लोग बुराइयां छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु उनसे छुड़ाने वाला कोई चाहिए, और वो ही छुड़ा सकता है जो अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करता है। तो जितना जितना हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करते जाते हैं उतनी उतनी हमारी बुराइयां छूटती जाती है और हमारा जीवन जो है एक सुगंधित फूल जैसा बन जाता है। तो इसीलिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें समाज को सुधारने के लिए अच्छाई को धारण करना है, और दूसरों को अच्छा बनाने के लिए हमें सदैव मदद करनी है। औरों को आगे बढ़ाना, उनके अंदर अच्छाइयाँ भरना, ये हमारा फर्ज बनता है। अगर हम अच्छे हैं तो पहले खुद सुधरो, सारा जग आप ही सुधर जाएगा। खुद गुणवान बन जाओ, औरों को गुणों का दान देना चालू कर डालो। इससे जैसा पुण्य का काम और दूसरा कोई नहीं है। तो धीरे धीरे ये जो हमारी भारत भूमि है, ये वापस स्वर्ण भूमि बनने में टाइम नहीं लगेगा। जब इतने समाज सेवक सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, दोनों तरफ से करेंगे, आध्यात्मिकता की भी सेवा करेंगे और साथ साथ में स्थूल सेवा भी करेंगे, तो समाज को परिवर्तन होने में कभी भी टाइम नहीं लगेगा, परंतु जल्दी से जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारी आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप चार पांच दिन जो यहाँ पर है, यहाँ जरूर आप राजयोग शिविर का भी अनुभव करेंगे और कैसा उसको जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को परिवर्तन में लाना है, इसकी कला सीख के जाएंगे। क्योंकि राजयोग ये जीवन जीने की कला सिखाता है, और वो कला जब आ जाती है तो हमारा जीवन जो है वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत बहुत खुशी है। आप सभी को बहुत बहुत आपका स्वागत भी है और आप सभी का आभार भी है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष दीदी जी का। आपने अपने दिव्य उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित किया। आपके उद्बोधन को मैं दो लाइनों में समेटना चाहूंगी कि हमें आचार्य नहीं बनना है, परंतु हमें अपने आचरण से दूसरों को सिखाना है। अब मैं मंच पर सहृदय निमंत्रण देना चाहूंगी हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी कमल दीदी जी को, जो हम सभी को राजयोग का अभ्यास कराएंगी। वो राजयोग का अभ्यास जिससे आज करोड़ों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन अपने जीवन को परिवर्तन कर चुके हैं, दिव्य गुणों से संपन्न कर चुके हैं। आदरणीय कमल दीदी जी बीकानेर सब जोन इंचार्ज हैं। आप बाल्यकाल से ईश्वरीय ज्ञान को स्वयं में समाकर ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रही। आपने गुजरात बीकानेर में अपनी सेवाएं दी हैं। आपका स्वरूप ही योगी जीवन को दर्शाता है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान, आप जैसा इंसान। आप सभी से एक निवेदन है कि कोई भी इस सभा को छोड़ करके ना जाए। आप सभी के लिए ईश्वरीय सौगात कार्यक्रम के अंत में रखी गई है।
शांति। विश्व के रचयिता विश्व पिता परमात्मा शिव की सर्व संतान, सर्वप्रथम आदरणीय संतोष दीदी जी, सम्मानित मंच एवं पधारे हुए आप सभी समाजसेवी भाई बहने, हम सभी अभी यहाँ बहुत सुंदर जीवन उपयोगी ऐसी बातों को सुन रहे हैं जिससे मानव जीवन श्रेष्ठ हो जाए, समाज समृद्ध हो जाए, संसार सुखमय हो जाए और सभी वक्ताओं ने हमें बहुत सुंदर बातें सुनाई। जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, यही हमारे जीवन को समृद्ध बनाने का आधार है। जब जीवन मूल्यों की बात आती है, नैतिक मूल्यों की बात आती है, सद्गुणों की बात आती है, सर्व धर्म में सर्व विद्वानों के द्वारा ये अवश्य कहा जाता है कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही इन जीवन मूल्यों को हमें जीवन में धारण करना है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे और कैसे हम अपने अंतर्निहित इन मूल्यों और शक्तियों को जागृत करें, उसे जागृत करने की विधि, उसी का नाम सहज राजयोग है। कहा जाता है गीता के भगवान ने भी भारत भूमि पर अवतरित होकर दैवी संपदा की स्थापना के लिए हमें योग की शिक्षा दी। अभी हमें भी इस सहज राज योग के अभ्यास द्वारा ही इस जीवन मूल्यों को जागृत करना होगा। हमें संसार में कोई भी चीज चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो उसका अकूट स्रोत सूर्य है। जल चाहिए तो उसका अकूट स्रोत समुद्र है। जीवन मूल्य चाहिए, सद्गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए तो उसका अकूट स्रोत केवल एक परमात्मा ही है, सत्यम शिवम सुंदरम ही है। हम सभी उसके साथ अपना संबंध जोड़कर, अपने मन का संबंध जोड़कर उस शक्ति को और गुणों को प्राप्त करें। योग वही एक मन की प्रक्रिया का नाम है। जिस प्रकार एक छोटी सी कली में फूल के सारे गुण विद्यमान ही समाहित है, जैसे ही कली के ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरण मिलती है तो वो कली फूल खिल करके फूल बन जाती है, वह कली विकसित हो जाती है। हम सभी के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसे जागृत करने के लिए अभी हम सभी वह ज्ञान के सूर्य, गुणों के सूर्य, शक्तियों के भंडार परमात्मा की किरण प्राप्त करें और उसके लिए आप सभी कुछ मिनटों के लिए अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को हम ऐसी बैठक में बिठाएं जो हिलना न पड़े, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें, अपने नेत्रों को खुला भी रख सकते हैं और जो शब्द आपको सुनाती जाऊं आप मौन में रहकर उसी का मनन करेंगे। आओ हम यह अंतर्मन की यात्रा करें, स्वचिंतन करें, प्रभु चिंतन करें, अपने आप को आवाज की दुनिया से समेट लें, बाहर की दुनिया से भीतर की ओर चलें, निज स्वरूप को देखें। मैं कौन हूँ? इस देह में निवास करने वाली एक चैतन्य शक्ति है। मैं एक सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूँ। मेरा निवास इस देह रूपी कुटिया में ब्रकुटी के मध्य है। मैं एक अजर अमर दिव्य शक्ति इस स्वरूप में मैं आत्मा पिता परमात्मा की अमर संतान हूँ। परमात्मा परम सत्य है, कल्याणकारी है, गुणों के भंडार है, शांति के सागर है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दिव्य प्रकाश मुझ चेतना को प्राप्त हो रहा है। परमात्मा के सानिध्य से मैं आत्मा शांत स्वरूप हो रही हूँ। प्रेम स्वरूप हो रही हूँ, सुख स्वरूप हो रही हूँ, शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। इस अलौकिक नाते से मैं संतुष्ट हूँ, कल्याणकारी परमात्मा का प्रकाश पाकर मैं आत्मा भी कल्याणकारी बन चुकी हूँ। यही मेरा सच्चित आनंद स्वरूप है, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। अब मैं आत्मा स्वयं के द्वारा शांति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश इस संसार में चारों ओर प्रवाहित करूंगी। यही मेरा लक्ष्य है, मुझे सदैव इसी स्वरूप में रहना है। यही मेरा स्वधर्म है, स्वकर्म है, स्वस्थिति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमल दीदी जी का। आपने बहुत सुंदर राजयोग का अभ्यास कराकर हम सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। हमारी परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी, जो कि ज्वाइंट चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज की, किसी कारणवश वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपना याद प्यार आप सभी को दिया है और साथ ही साथ आप सभी के लिए ईश्वरीय सौगात भेजी है। ये फ्रेम लक्ष्मी नारायण का बहुत सुंदर फ्रेम है और दूसरा ये डायरी और पेन है। इन दोनों में से किसी एक सौगात को आपको लेना है। सौगात लेने के लिए 5 लाइनें बनेगी। लेफ्ट साइड 2 लाइनें होंगी, राइट साइड 3 लाइनें होंगी। तो आप सभी धीरे धीरे उठ करके लाइन बनाकर सौगात लेंगे। और इससे पहले मैं आदरणीय संतोष देवी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमारे मंचासीन अतिथियों, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि को ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय प्रसाद देकर सम्मानित करें। कल सुबह आप सभी यहाँ ही एकत्रित होंगे। सुबह 6:30 से 8 बजे आप लोगों के लिए मेडिटेशन सेशन रहेगा। कोई भी बीके भाई बहन और कोई भी गाइड आज ये सौगात नहीं लेंगे। आज जो भी गेस्ट आए हुए हैं उन्हीं को सौगात दी जाएगी। सभी गेस्ट से निवेदन है कि आप कल सुबह 6:30 बजे इसी हॉल में एकत्रित हो जाइएगा। बहुत सुंदर आपके लिए क्लास है, एक्सपीरियंसिंग रियल सेल्फ। आपके फाइल में ये बुकलेट दी हुई है जिस पर पूरे प्रोग्राम की डिटेल है। एक बार आप सभी उस डिटेल को जरूर देख लें।